डियर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आज 30 अप्रैल 2015 है, यानी कि अप्रैल का लास्ट डेट। और आज के इस स्पेशल ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यानी कि डॉक्टर विजय अग्रवाल। मित्रों, इससे पहले कि मैं अपने इस ऑडियो की शुरुआत करूं, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हालांकि मैंने अभी वर्ड यूज किया है कि ये स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस स्पेशल के सामने मुझे एक और स्पेशल शब्द लगा देना चाहिए, यानी कि ये स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा कहने के पीछे उद्देश्य ये है कि अभी तक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस में जो हम लोग बात करते थे, या तो जो हमारे क्वेश्चन पेपर आए हैं उनकी हम एनालिसिस कर रहे थे, या फिर एक टॉपिक को लेकर के हम बात करते थे, लेकिन ये स्पेशल इस मायने में है कि अब हम उस टॉपिक पर बने हुए एक क्वेश्चन को लेकर बात करने जा रहे हैं। यानी कि ये जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है ये मोर स्पेसिफिक है, यानी कि जैसे कि एक रास्ता चौड़ा होते होते और बिल्कुल आखिरी में जाकर के एक बिंदु में सिमट जाए, लगभग ये स्पेशल ऑडियो गाइडेंस उसी श्रेणी में आता है। इसीलिए मैंने स्पेशल ऑडियो गाइडेंस कहने की हिम्मत जुटाई है, और ये मैंने कहना इसको इसलिए चाहा है ताकि आप भी उसी अटेंशन के साथ, उसी अलर्टनेस के साथ इसे बहुत ध्यान से सुने, बार बार सुने, और यदि आपको ठीक लगता हो तो इसे अपने पास प्रिजर्व करके भी रखें। और वैसे भी मित्रों, मेरी सलाह आप लोगों को यही है, आप लोग माने या न माने, आप लोग को सही लगे या न लगे, वो ये कि जितने भी स्पेशल ऑडियो गाइडेंस होते हैं एक बार सुनने के नहीं होते, या आपके नोट्स की तरह हैं, एक तरह से वॉइस नोट्स आप कह लीजिए, और इन्हें आपको बार बार सुनना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि आप इन्हें संभाल कर रखें। तो दोस्तों, अब मैं आज के सब्जेक्ट पर आता हूं, और मेरा आज का जो सब्जेक्ट है मित्रों, हालांकि आज ये 30 अप्रैल की तारीख है और आप इसे आज नहीं सुनेंगे, बाद में कभी सुनेंगे, और बट नेचुरल की बहुत जल्दी ही सुनेंगे, लेकिन मैं जिस बात की यहां चर्चा करने जा रहा हूं उसका संबंध 20 अप्रैल 2015 से है। आपको मालूम होगा कि 20 अप्रैल के डेली ऑडियो गाइडेंस के नॉलेज सेंटर में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था और कहा था कि इस क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने उत्तर लिख लिए होंगे, अपने अपने उत्तर लिख लिए होंगे। तो मित्रों, मैं अब आपको इसका 200 शब्दों में उत्तर सुनाने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको इस प्रश्न के माध्यम से आंसर राइटिंग की पूरी जो एक क्राफ्ट हो सकती है, पूरी जो कला हो सकती है, सिविल सर्विस की तैयारी करने की पूरी जो एक रणनीति हो सकती है, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को लेकर के आज मैं उस पर बातें करने जा रहा हूं। ऐसा इसलिए भी दोस्तों कि मेरा मानना है और मैं इस पर बहुत दृढ़ रूप में इसे स्वीकार करता हूं कि सिविल सर्विस के क्वेश्चंस कैसे लिखे जाने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये कह लीजिए, लिखे जाने चाहिए की बात नहीं है, कैसे होने चाहिए यह बता पाना बहुत मुश्किल है। इसकी खूबसूरती इस बात में है कि जितने स्टूडेंट हैं, जितने लोग लिखेंगे उतनी तरह के होंगे, लेकिन उसमें जो कंटेंट होगा, जो बातें होंगी, वो उतनी ही तरह की नहीं होंगी, वो बहुत ही सेलेक्टेड होंगी, वो बहुत कॉमन होंगी। तो वो कॉमन कौन सी बातें होती हैं जिनको यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है, उन्हें आप कैसे लाएंगे, आपकी तैयारी की रणनीति क्या होगी, फिर लिखने की क्या होगी, इसी को लेकर के आज मैं यहां आपसे बात करने जा रहा हूं। और मैं समझता हूं मित्रों, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, और मेरी कोशिश होगी कि इस थोड़े से उबाऊ टॉपिक को मैं इंटरेस्टिंग बना सकूं। कितना सफल होता हूं ये आप लोगों के बाद में फीडबैक से मुझे पता लगेगा। तो पहले मैं आप लोगों को फ्रेंड्स याद दिला दूं कि वो प्रश्न क्या था। वो प्रश्न था, कई कमियों एवं आलोचनाओं के बावजूद वर्तमान सरकार ने वर्ष 2015-16 के बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय मजदूरी गारंटी योजना के लिए पर्याप्त बजट का आवंटन किया है। सरकार के इस विरोधाभासी निर्णय के औचित्य की समीक्षा कीजिए, 200 शब्द। ये क्वेश्चन था मित्र। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप ईमानदारी के साथ सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, मेरा जोर ईमानदारी शब्द पर है, तो आपको मित्रों मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत से जी चुराते हैं, मेहनत मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी एक ही चीज को अलग अलग तरीके से तैयार करने में, पढ़ने में, रिपीट करने में हम ऊब जाते हैं, तो हम ऊबे नहीं, तो वो ऊब तब हमारे दिमाग से निकलेगी जब उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता रहेगी, कमिटमेंट रहेगा, यानी ईमानदारी रहेगी। तो यदि आप ईमानदारी से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा पहला पॉइंट तो यह है कि ये जो टॉपिक दिया गया है ये देखिए मनरेगा के ऊपर है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं मनरेगा के ऊपर है। अब आपको यदि इससे ये निष्कर्ष निकालने में दिक्कत नहीं हो रही है कि इसका मतलब है कि जो मनरेगा है वो सिविल सर्विस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इससे सहमत हैं तो आपको चाहिए कि आप इस प्रश्न लिखने की जो प्रैक्टिस के लिए आपसे कहा गया है इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए इस टॉपिक पर अच्छी तैयारी कर लें, इस टॉपिक पर जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। लेकिन याद रखिए केवल जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको इसकी इस पर रिसर्च करने की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात इसलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि आप देखिए योजना पत्रिका कुछ महीने पहले योजना पत्रिका में कुछ कुरुक्षेत्र में भी थे मनरेगा को लेकर के काफी आर्टिकल्स आए और उसमें काफी रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स थे, स्टडी बेस्ड आर्टिकल्स थे। तो आपको रिसर्च बेस्ड और स्टडी बेस्ड आर्टिकल्स को पढ़ना तो है लेकिन उसमें से एक दो फैक्ट ले लेने हैं जो आपके काम के हों, जो किसी भी एक कॉमन मैन को थोड़ा सा जानना चाहिए या ऐसा कॉमन मैन है जो जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, ये वो कॉमन मैन नहीं है जो मनरेगा में जाकर के और वहां काम मांगता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मनरेगा में काम मांगने वाला वो कोई घटिया आदमी होता है, नॉट एट ऑल, उसको ऐसे मत लीजिएगा, मतलब हम मान करके चलते हैं कि मनरेगा में जो काम करने वाला वर्ग है वो काफी गरीब वर्ग है, गांव में रहने वाला वर्ग है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। तो ये अवसर है जब आप मनरेगा पर अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं चाहिए। अब मैं दोस्तों अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से ये कहता रहता हूं कि जो हमारे अनसॉल्व्ड पेपर होते हैं वो हमारे सबसे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, हमारे लिए लाइट हाउस की तरह होते हैं। अब आप देखिए कि मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कहता हूं, अगर आप विश्वास कर सके मित्रों तो मैं बहुत सोच समझ कर कोई बात कहता हूं और अगर कभी कोई गलत बात कह जाता हूं और बाद में मुझे लगता है कि ये गलत थी तो मैं उसे स्वीकार करके माफी मांगने में और उसे करेक्ट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकता। अब आप देखिए कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया, इस तरह का क्वेश्चन क्यों बनाया, एक तो टॉपिक क्यों लिया मनरेगा क्यों लिया और दूसरा फिर इसकी फ्रेमिंग इस तरह से क्यों की। इसी को आप स्टेट सिविल सर्विस में चले जाइए या और दूसरे एग्जामिनेशन में चले जाइए तो मनरेगा के कोई पांच प्रमुख उद्देश्य बताइए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन सिविल सर्विस में इस तरह के नहीं पूछे जाते और आप इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित भी हैं। तो मैंने ये प्रश्न चुना क्यों है दोस्तों, इसके कुछ कारण हैं और बहुत वैलिड और बहुत ही लॉजिकल कारण है। पहला तो यह कि ये भारत सरकार का हमारे यहां का फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में से एक है, साथ सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्लैगशिप प्रोग्राम कहने का मतलब है कि सरकार जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो उसके सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम होते हैं उनको कहा जाता है फ्लैगशिप प्रोग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। डेफिनेटली उसमें हम जो शामिल करते हैं उसमें मनरेगा है, स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्राम्स हैं, उसमें हम शिक्षा में खासकर मिड डे मील को लेते हैं, मध्यान्ह भोजन को लेकर लेते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना को भी हम उसमें लेते हैं, आवास योजना को लेते हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना लेते हैं। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स है सरकार के अपने देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, खासकर जो वर्ग बहुत गरीब है, जो वर्ग अल्पसंख्यक है, बहुत पिछड़ा हुआ है, उन वर्गों के लिए, गांव के विकास के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए, तो ऐसे हम इनको हम फ्लैगशिप प्रोग्राम कहते हैं और मनरेगा उसमें से वन ऑफ द टॉप मोस्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसलिए फ्लैगशिप प्रोग्राम एज सच आपके सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अब मैं आता हूं अनसॉल्व्ड पेपर, 2013 के मेंस के पेपर उठा के देखिए, 2014 के मेंस के पेपर उठा करके देखिए, तो आपको हमेशा दो तीन चार क्वेश्चन फ्लैगशिप प्रोग्राम पर मिलेंगे ही। मैंने निकाले हैं, अगर आप 2013 में देखें तो आपको मिड डे मील पर क्वेश्चन मिलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप पर आपको दोनों साल तो 13 और 14 में मिलेगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है उस पर मिलेगा, जो बेसिकली कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ही किया गया है उस पर मिलेगा, और इस पर भी आपको 2014 में क्वेश्चन मिलेगा। तो मुझे ये लगा कि इस बार मनरेगा को मैं चुनता हूं, लेकिन क्या मुझे लगा और मैंने चुन लिया, नहीं दोस्तों, ये मेरी अपनी विम्स नहीं है, ये मेरे मन की लहर नहीं है, इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक क्यों है दोस्तों, वो आप देखेंगे कि अगर आप ऑडियो गाइडेंस को लगातार सुन रहे हो तो भी, अगर अखबारों को लगातार पढ़ रहे हो तो भी, और रेडियो न्यूज सुन रहे हो तो भी, देखेंगे कि जब से ये नई सरकार आई है तब से मनरेगा लगातार चर्चा में है। मैंने इसके बहुत से आर्टिकल्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं, और चर्चा में रहने का कारण ये है कि जो मनरेगा है, लोगों को लग रहा था कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है वो इसको बंद कर देगी, क्योंकि ये मान करके चलते हैं कि अरे ये सरकार तो जो है पूंजीपतियों की सरकार है, इसको फालतू के खर्च समझ करके वो बंद कर देगी, ऐसा चल रहा था। और इस पर फिर स्टडीज भी उसी समय आप देखिए कि आने लगी थी, स्टडीज आने लगी थी कि नहीं ये यहां से फेल हो रहा है, यहां बेकार है, फलाना हो रहा है, ये कमजोरियां हैं, भले ही उसका पर्पज जो भी रहा हो। तो ये इस सब ने एक माहौल ऐसा बना दिया था कि ये लगने लगा था कि यार ये जो मनरेगा है सरकार इसको बंद कर देगी। और जब बजट आया तो लोग सुनकर के दंग रह गए कि मनरेगा में तो इसके लिए पिछले साल से भी अधिक बजट कर दिया गया है। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, राइट फ्रेंड्स। और बजट का आवंटन कब बढ़ाया गया मनरेगा के लिए, तब जबकि जो दूसरे हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कानून है, जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम के कानून है, आप मिड डे मील को उठा करके देखिए, उसका बजट घटा दिया गया है, और दूसरे प्रोग्राम्स उठा करके देखिए, और सब में लगभग इन बिटवीन 15-25% बजट कम किया गया है और मनरेगा में बढ़ा दिया गया है। तो डेफिनेटली यानी कि मनरेगा अभी भी सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बावजूद इसके कि वो बहुत सी आलोचनाओं के केंद्र में रहा है और इसकी बहुत सी कमियां गिनाई भी गई हैं। और इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट घटना इस बीच में हुई है मित्रों, और इन सब की मैंने चर्चा की है, आप ऑडियो गाइडेंस को अगर ध्यान से जाप करने की कोशिश करेंगे तो मैंने सबकी सबसे चर्चा की है। जो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मनरेगा को लेकर के जब प्रधानमंत्री से प्रश्न किया गया, या अपने जब बजट भाषण में वो रिप्लाई दे रहे थे प्रधानमंत्री जी ने, तो एक बहुत खूबसूरत उन्होंने व्यंगात्मक अंदाज में बात की थी कि जो मनरेगा है उसको मैं बंद नहीं करने वाला हूं, क्योंकि आप मुझे अज्ञानी समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इसको कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे जो है ना राजनीतिक सूझबूझ नहीं है। मुझे राजनीतिक सूझबूझ है, और मेरी राजनीतिक सूझबूझ ये कहती है कि मनरेगा को बंद मत करना, क्योंकि ये जो पिछली सरकार है उसका एक असफलता का जीवंत स्मारक है। ये उन्होंने बात कही थी, तो इस पर भी फिर बहुत चर्चा हुई, चूंकि व्यंगात्मक अंदाज में कहा गया था तो अखबारों में भी खूब आया, एडिटोरियल भी खूब आया, चैनल्स पर भी खूब आया। तो इन कारणों से मित्रों मैंने मनरेगा को लिया है। तो शायद आपको लग रहा होगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखिए मैं केवल हो सकता है की बात कह रहा हूं, मैं होगा की बात नहीं कह रहा हूं, यहां सर्टेनिटी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो मित्रों इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना है। अब आप देखिए कि फिर अब आप दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये उठ सकता है कि फिर इस तरह का ये क्वेश्चन बनाया क्यों गया है, इसकी फ्रेमिंग इस तरह की क्यों है, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं, क्योंकि सिविल सर्विस में जो प्रश्न भी तैयार किए जाते हैं बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही अनुभवी लोगों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके दो कारण हैं फ्रेंड्स। नंबर एक कि सिविल सर्विस में कभी भी स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो आप भूल जाइए कि मनरेगा के उद्देश्य बताइए, मनरेगा से अभी तक क्या फायदे हुए हैं बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए, ऐसे नहीं प्रश्न पूछे जाएंगे। ये दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन सिविल सर्विस में नहीं पूछे जाते, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि सिविल सर्विस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे हमेशा दो नेचर के होते हैं, एक तो जिनकी चर्चा बहुत हुई हो, जिन पर काफी मटेरियल भी आया हो, काफी बातचीत भी हो रही हो, और दूसरा वो क्रिटिकल एनालिसिस वाला हो, मतलब जिसमें दो चीजों का परीक्षण होता हो, नंबर एक कि आपके दिमाग की एनालिसिस पावर कितनी है, मतलब आपके पास एनालिसिस करने की क्षमता है, और दूसरा उसके बारे में आपकी अपनी भी कुछ सोच है, और तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि आप अपने समय के प्रति अलर्ट कितने रहे हैं। जो अलर्ट होगा वही इन क्वेश्चंस को सही तरीके से हैंडल कर सकेगा। तो इसलिए मैंने भी इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान में रखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहला तो यह है कि भले ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है मनरेगा पर, मैंने कहा कि रिसर्च भी आ रहे हैं, स्टडीज भी आ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी सोच रहे हैं, वो भी इस पर विचार करते हैं, लेकिन इस स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन को मैंने बहुत ही जनरलाइज्ड किया है, क्योंकि याद रखिए जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है, राइट? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं है, है ना, ये रूरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन नहीं है। ये अगर इनका है भी, इकोनॉमिक्स का भी है, ये रूरल डेवलपमेंट का है, ये रोजगार से भी संबंधित है, इकोनॉमिक पॉलिसी से भी रिलेटेड है, लेकिन है ये जनरल। तो एक तो मैंने इसका जनरलाइज किया है, दूसरा इसको मैंने एनालिटिकल बनाया है, दूसरा तीसरा मैंने इसको कंटेम्प्रेरी बनाया है, मनरेगा को ही कंटेम्प्रेरी बनाया है बजट को लेकर के। और इसमें आप देखेंगे कि आपके सतर्कता की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी जब आप इसको क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, उसके बारे में मैं भी आपको कुछ तथ्य बताऊंगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से की है। मित्रों, ये इतने विस्तार से मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं ताकि ये चीज आपके अंदर एक तीसरा नेत्र बना सके, थर्ड आइज, चीजों को देखने समझने की शक्ति आप में पैदा कर सके। क्योंकि जब ये थर्ड आइज आपकी थोड़ी सी खुलने लगेगी, तब जब आप यही न्यूज पढ़ेंगे, न्यूज सुनेंगे, तब उसमें से अपने लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण आपको लगती है, फट से आप समझ जाएंगे और नोट कर लेंगे। ये बहुत जरूरी है। मैं इसलिए इस आंसर को मैं थोड़े से अलग तरीके से आपके सामने हैंडल करने जा रहा कर रहा हूं। अदरवाइज मैं देखिए 200 शब्द लिख करके आपको सुना देता, बात खत्म हो जाती, उससे आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती। दोस्तों, मैं आपकी थाली में मछली परोसने के पक्ष में नहीं हूं, मैं तो आपको मछली पकड़ने वाला सिखाने पर विश्वास कर रहा हूं। और सच पूछे तो मेरी यही एक विनम्र कोशिश भी है। मैं कितना सफल होता हूं, कितना नहीं सफल होता हूं, निश्चित रूप से ये केवल इसका मूल्यांकन आपकी अपनी सफलताएं और असफलताएं ही करेंगी। अब आप देखिए फ्रेंड्स, अब मैं थर्ड पॉइंट पर आता हूं, और वो थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसके चैलेंजेस क्या है, आपके सामने किस तरह की चुनौतियां पैदा कर रही है, राइट? चैलेंजेस, क्योंकि जब तक आप चैलेंजेस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक आपको लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो हम कर सकते हैं, ये तो क्या है, मतलब क्या पूछा गया है, कहते कि आईएएस इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है और बस केवल ये पूछा गया है, और ये होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स आप देखिए कितना बड़ा कितनी बड़ी संख्या होती है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने वालों की, और मेंस में कितने लोग पहुंच क्वालिफाई कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते उनके नंबर देखिए कितने पुअर होते हैं, और यहां तक जो कर लेते हैं उनके भी देखिए कि नंबर कितने पुअर होते हैं। यानी कि जो क्वालिफाई कर भी रहे हैं उनमें भी ये पॉसिबिलिटी तो है कि अपने मार्क्स को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी तो है ना। तो इसके बाद भी वो अभी उस डेस्टिनेशन को नहीं पा रहे, ठीक है, अपने उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया कि वो सिविल सर्वेंट हो गए, लेकिन जो मार्क्स के स्कोर करने का जो डेस्टिनेशन हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो तो वो नहीं पा रहे हैं ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही चैलेंज आपके सामने ये जो क्वेश्चंस हैं वो पेश करते हैं। अब चैलेंजेस को देखिए, इसमें तीन चार चैलेंजेस मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, और ये इसी के साथ नहीं होंगी, ये ज्यादातर क्वेश्चंस के साथ होंगे, ज्यादातर क्या मैं कहना चाहूंगा कि लगभग हर क्वेश्चन के साथ होंगे। इसलिए मैं रिप्रेजेंटेशन के रूप में बात कर रहा हूं, जो ये जो क्वेश्चन है या ये जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है, ये एक तरह से आंसर राइटिंग के दूसरे क्वेश्चंस का भी रिप्रेजेंटेटिव ऑडियो गाइडेंस है। पहला है, इसकी सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि ये दिख सरल रहा है लेकिन बहुत टफ है, तो आप इसको सरल मत समझिएगा। सरल क्यों नहीं है मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट? तो अपने दिमाग में रखिए इट्स नॉट इजी। दूसरी बात दोस्तों कि इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे या जब लिखना शुरू करेंगे, तो आपके पास दो अलग अलग रास्ते होंगे। नंबर एक कि आप इस क्वेश्चन को स्टडी के बेस पर सॉल्व कर रहे हैं या एस्टिमेट के आधार पर सॉल्व कर रहे हैं। मैं इसे रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चन सिंपल होता है उसके सामने सबसे, वो स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही पेश करता है कि आप उस क्वेश्चन को अनुमान लगाकर हल कर सकते हैं। ये हुआ होगा क्योंकि ऐसा तो होता ही है, ये हुआ होगा, और वो हो भी जाता है, वो सही भी पड़ता है। लेकिन जो एग्जामिनर है वो तुरंत समझ लेता है कि ये आप केवल एस्टिमेट लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, आपके स्टडी पर बेस्ड नहीं है। और मित्रों, यहां जो मैं स्टडी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें स्टडी भी है, मतलब आपने इसको पढ़ा है, आपके पास उसके बहुत अच्छे कंटेंट भी हैं। देखिए, कंटेंट तो स्टडी से आएंगे, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि आपने इस पर सोचा भी है, ये आपके थॉट बेस्ड भी है, इस पर आपने विचार भी किया है। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ लिया और इसके बाद जो जो कंटेंट थे उनको जुटा करके एक जगह रख दिया। सिविल सर्विस के आंसर राइटिंग में वो नहीं चलता है। तो दूसरा जो चैलेंज जो पेश कर रहा है ये क्वेश्चन आपके सामने, वो ये है कि आपका जो उत्तर है वो एस्टिमेट पर बेस्ड है या स्टडी पर बेस्ड है. डेफिनेटली वो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन योर स्टडी, योर थॉट, योर थिंकिंग. थर्ड जो एक चैलेंज आता है मित्रों, वो तो वर्ड्स लिमिट का आता ही है. हार्डली 200 वर्ड्स, इवन इट कैन बी आस्क्ड 150 वर्ड्स, इवन 200 वर्ड्स हम लेकर के चलते. ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे खतरनाक चैलेंज है. अगर इसी को वो छोड़ दे, शब्दों की संख्या छोड़ दे, सीमा आपको हटा दे, तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा यार 500 शब्दों में है, बड़े इजी तरीके से कर सकेंगे. इजी तरीके से नहीं, बड़े कंफर्टेबल तरीके से. कंफर्टेबल शब्द यूज करना चाहिए कि बड़ा कंफर्टेबली इसको हम कर लेंगे. लेकिन मुश्किल ये हो गया है कि मेरे शरीर की लंबाई तो 5.5 फिट की है और मुझको जो चद्दर दे रखी है वो 4 फिट की है और ठंड खूब पड़ रही है. अब सवाल यह है कि अगर मैं मुंडी बचाता हूं तो मेरे तलवे ठंडे होते हैं और तलवों को बचाता हूं तो मेरी मुंडी ठीक ठंडी होती है, कान में से हवा जाती है. तो अब मैं क्या करूं कि इस 4 फिट के अपने चद्दर से इस 5.5 फिट के शरीर को सर्वाइव कर सकूं. यह सबसे बड़ा चैलेंज है. कहने के लिए आपके पास 600 वर्ड्स हैं, लेकिन लिखना आपको 200 वर्ड्स में है. ये तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है. तो मित्रों, ये तीन सबसे बड़े चैलेंज ये क्वेश्चन आपके सामने प्रोवाइड कर रहा है. अब आप देखिए कि अब हम आते हैं कि अब इसको क्या किया जाए, राइट? अब हम आंसर राइटिंग पर आते हैं, ठीक है? अब आंसर राइटिंग के हम स्टेज पर आते हैं. ये पहले तीन स्टेजेस मैंने आपको अलग अलग बताए हैं. पहला तो ये तक व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि मैंने क्यों चुना है. दूसरा मैंने बताया कि व्हाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, या मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से क्यों फ्रेम किया. और तीसरा मैंने आपको बताया है कि सर दोस्तों की ये क्वेश्चन हमारे सामने किस तरह के चैलेंजेस पेश करता है. अब मैं आता हूं अब इसको हम कैसे लिखें, राइट? अब इसके मैं स्टेजेस पर आता हूं दोस्तों. तो पहला स्टेज है, याद रखिए और कभी मत भूलिए, वो है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए. मनरेगा आपने पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया, आप बुरी तरह से मार खा जाएंगे. ये क्वेश्चन मनरेगा पर तो है, लेकिन सीधे सीधे मनरेगा पर नहीं है. आपको देखना चाहिए कि मनरेगा इसका केवल टॉपिक है, लेकिन मनरेगा नाम के टॉपिक के किस पार्ट पर है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. डोंट स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन. पढ़ने के तुरंत बाद लिखना शुरू मत कर दीजिए, वेट कीजिए. और चूंकि अभी तो आप प्रैक्टिस के ही दौर से गुजर रहे हैं, तो मैं प्रैक्टिस के ही दौर की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां तो आपके पास इतना समय नहीं मिलेगा, लेकिन आपके दिमाग का मैकेनिज्म इतना फास्ट और इतना एफिशिएंट हो जाना चाहिए प्रैक्टिस करते करते कि आप वहां फट से इसका उत्तर लिखना शुरू कर सके. अब हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों. इसको पूरा पढ़िए, आप देखिए. कई कमियों एवं आलोचनाओं के बावजूद, इसका मतलब है कि जो मनरेगा है उसमें कुछ कमियां हैं जिसको लेकर के इसकी आलोचना हो रही है. इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, राइट? दूसरा है कि वर्तमान सरकार ने 15-16 के बजट में, मतलब वर्तमान सरकार ने, अब पिछली बातों को सरकार की बात छोड़ दीजिए, जो वर्तमान सरकार है और फिर बजट की बात आ गई, इसको कंटेम्प्रेरी करंट से जोड़ दिया है. इस योजना के लिए पर्याप्त बजट का आवंटन किया है. पर्याप्त बजट इसका मतलब सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी. तो यहां आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस पर्याप्त बजट क्या है. क्या ये आंकड़ा आपके दिमाग में है, यानी कि बजट का क्या प्रोविजन है, ये सेकंड हो गया. और ये जो पर्याप्त बजट का आवंटन किया है, ये शो कर रहा है कि फिर भी इसमें सरकार इसको खत्म नहीं कर रही है. इतनी कमियां हैं, इतनी आलोचनाएं हो रही हैं, इसके बाद भी इसको खत्म नहीं कर रही हैं. ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, इसकी मतलब नहीं, कमियां हैं, असफल ये प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ फायदे हैं, इसकी कुछ सफलताएं भी हैं, राइट? इसका मतलब है कि जैसे लड़कियों की दो चोटियां होती, हालांकि आजकल दो चोटियों वाली लड़की देखने को नहीं मिलती. मैं थोड़े से मुझे मेरे दिमाग में पुराने दृश्य याद आ जाते हैं गांव के, जहां दो चोटियां लड़की करती थी. और मुझे ना ये सिंपल, ये जो उदाहरण एग्जांपल, वो बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए ना, दो चोटियों को कैसे आपस में गुथा जाता है. और क्लास में भी मैं अपने इसके एग्जांपल देता हूं. मतलब दो चीजों को एक साथ बड़ी खूबसूरती के साथ आप मिलाते हैं, तो यहां एक चीज क्या हो गई आपके पास, सफलताएं, और दूसरी चीज हो गई असफलताएं, यानी कि दो लट हो गई चोटियों की। अब इनको आपस में आपको खूबसूरत तरीके से गूंथना है, सफलताएं असफलताएं, बजट का प्रोविजन। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन को समझना, सरकार के इस विरोधाभासी निर्णय, मतलब विरोधाभासी शब्द को समझिए, वो क्या दे रहा है कि एक तरफ तो अगर कोई प्रोग्राम असफल है और उसके लिए अगर आप इतना बड़ा बजट दे रहे हैं तो ये क्या है, विरोधाभासी नहीं है? असफल है तो भैया बंद करो, खत्म करो। तो ये विरोधाभासी निर्णय कि आप एक तरफ असफल भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसके लिए आप पैसा भी दे रहे हैं, ये विरोधाभासी निर्णय हो गया। तो ये ऐसा क्यों कर, औचित्य मतलब इसका औचित्य क्या है, फिर ऐसा सरकार क्यों कर, इसके उचित उचितता पर आप की समीक्षा कीजिए, बताइए 200 शब्द। तो मित्रों जब आप इन चीजों को लेंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और आप देखिए कि इसके तीन अगर हम करें तो तीन हिस्से हो गए, नंबर एक कि इसकी असफलताएं क्या हैं, दूसरा हो गया कि इसकी सफलताएं क्या हैं, और तीसरा हो गया कि इसकी हमें आलोचनात्मक एक तरह से औचित्य का परीक्षण करना है, औचित्य की हमें समीक्षा करनी है, राइट। अब आप देखिए कि अब मैं आपको बता रहा हूं, अब नेक्स्ट उस पे आ रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा, और लास्ट में मैं फिर आपको कंटेंट दूंगा फ्रेंड्स कि आपके कंटेंट क्या होने चाहिए, फिर आप इसको बेस बना करके और फिर अपने अपने उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए और उस पर फिर मेहनत भी कीजिए। पहला क्वेश्चन उत्तर लिखिए, फिर दूसरा लिखिए, फिर तीसरा लिखिए, यानी कि उसी को देख के लिखिए, एकदम उसको छोड़ दीजिए पहले वाले को, दूसरा फिर फ्रेश लिखिए, तीसरा फिर फ्रेश लिखिए, और फिर देखिए कि उसमें से बेस्ट कौन है, और फिर जो बेस्ट आपको मिला है फिर उसको और इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। जो आपने दूसरे उत्तर लिखे हैं उनमें से देखिए कि क्या क्या इसमें छूट गया तो उनको लेकर के आइए, फिर आपका एक अच्छा मॉडल तैयार होगा। और ये केवल प्रैक्टिस से आ सकता है दोस्तों, वो मेरे ऑडियो से भी नहीं आ सकता। देखिए मैं तो केवल आपकी अपनी उंगली दिखा करके आपको रास्ता बता सकता हूं, आपके बदले में चल नहीं सकता, क्योंकि यूपीएससी ऐसा अलाउ नहीं करती है। देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर बहुत सरल है, मैं स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज्यादा बातें करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि ये एक ओपन चीज है, हर क्वेश्चन अपने स्ट्रक्चर की खुद डिमांड करता है कि मुझे इस तरीके से हैंडल करो, ठीक वैसे जैसे कि हर बॉल जो क्रिकेट की बॉल फेंकी जाती है वो बॉल खुद बैट्समैन को बताती है कि मुझे कैसे हिट करोगे और किधर हिट करोगे, तो मैं लगभग लगभग वही मानता हूं। लेकिन इस क्वेश्चन को लेकर के चूंकि मुझे उत्तर के फ्रेम के बारे में बात करनी है पूरी, तो मैं बताना चाहूंगा वो स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा कि पहला तो ये है कि आपके जो ओपनिंग रिमार्क होगा, और ओपनिंग रिमार्क में आप इसकी सारी चीजों को समेट लीजिए, बस डिपेंड ये करेगा कि आप इसको समेटते समय कंटेंट कैसे ला सकते हैं। जैसे अगर मुझे कंटेंट लाना हो तो मैं कहूंगा पिछले 10 सालों, पहला शब्द यानी कि मैं ये बता रहा हूं कि 10 साल पहले मनरेगा शुरू किया गया था, पिछले 10 सालों से जारी मनरेगा प्रोग्राम के लिए इस बार भी सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए, अब मैं आंकड़ा डाल दूंगा बजट की जगह, मैं आंकड़ा डाल दूंगा कि 35,000 करोड़ रुपए के आवंटन ने राजनेताओं और अर्थशास्त्रियों को चौंका दिया था। अब आप देखिए कि जो मैंने ओपनिंग दिया इसमें देखिए कि चीजें क्या क्या हैं। मैंने बता दिया कि ये 2005 में शुरू हुआ था या 10 साल पहले शुरू हुआ था, मैंने ये भी बता दिया कि बजट में 35,000 करोड़ रुपए हुआ, और फिर मैंने ये दे दिया कि ये बड़ा विरोधाभासी इसलिए था। अब मैं विरोधाभासी शब्द को एनालाइज कर दे रहा हूं कि चाहे वो अर्थशास्त्री हो, राजनेता का मतलब सच पूछे तो जितने भी अपोजिशन के थे वो भी चौंक गए कि अरे ये क्या हो रहा है, चौंका दिया कि इतनी कमियों के बावजूद सरकार बजट दे रही है, ये मेरी ओपनिंग होगी, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद मैं इसके डिस्क्रिप्शन पर आऊंगा, वर्णन पे आऊंगा, जिसको मैं एक बहुत ही बचकाने तरीके के शब्द के इस्तेमाल कर रहा हूं जो मुझे नहीं करने चाहिए लेकिन समझाने के लिए जरूरी है, क्योंकि मैं लेकिन ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिखने के लिए ऊपर आ रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं फिर आऊंगा, इसकी शुरुआत करूंगा मैं कमियों से, आलोचनाओं से कि इसमें क्या क्या कमियां रही हैं, इसके बाद बावजूद शब्द का इस्तेमाल करके फिर मैं इसकी खूबियां पर आऊंगा, फिर इसे इसके बावजूद लागू क्यों किया गया है। लेकिन मित्रों ये जो लिखने का मेरा तरीका होगा ये डिफरेंट तरीके से होगा, मतलब अगर मैं कोई कमियां लगा रहा हूं, कमियों की जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो मैं उसी समय उसकी काट भी पेश कर दूंगा यदि कोई है तो। जैसे मैं करप्शन की बात करूंगा, जैसे मान लीजिए कि मैं कमियों की एक बात कर रहा हूं कि ये आज सोशल ऑडिटिंग में ये पाया गया है या सीएजी की रिपोर्ट में ये पाया गया है कि लोगों को मजदूरियां पूरी मजदूरी नहीं दी जाती थी, करप्शन था। इसके बावजूद आप कह सकते हैं, इसके बावजूद अध्ययन में ये भी पाया गया है कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो लोगों की वेजेस थी या लोगों का पूरा जो स्टैंडर्ड है उसमें वृद्धि हुई है। यानी कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि मजदूरी पूरी नहीं मिल रही है, लोगों को जॉब अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा, लोगों को जॉब भी नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मांगने जा रहे हैं लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा है, इसके बावजूद ये हो रहा है। तो जिस जो मैंने आपको कहा कि चोटी की दो लटें होती हैं और दोनों को आप एक दूसरे से गूंथते हुए चलते हैं, इस तरीके से मैं उसको लिखूंगा। मैं ऐसे डिवाइड नहीं कर दूंगा कि इसकी ये कमियां थी और ये इसकी सफल अच्छाइयां हैं और इसलिए सरकार ने इसको जारी रखने का फैसला किया है, मैं वहीं उसको लिखूंगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आपका निष्कर्ष आ जाएगा कि ऊपर के वर्णन से बहुत स्पष्ट होता है कि जारी रखना देश के हित में होगा या इस वर्ग के हित में होगा, यहां तक कि सरकार के राजनीतिक हित में भी ये होगा। इस तरीके से आप निष्कर्ष दे देंगे और बात खत्म हो जाएगी। अब मित्रों मैं आपको थोड़े से कंटेंट की बात करता हूं, जो मैंने निष्कर्ष ये आपको जो मैंने बताया था स्टडी पर बेस्ड होने चाहिए, राइट। इसको मैं दो पक्ष में आपको बता देता हूं। आप देखिएगा कि आपने जो तैयारी की है क्या वो चीजें आपके पास ये हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे से आप ध्यान रखिएगा। और आपको अगर आप याद करने की कोशिश कीजिए मित्रों कि जब भी ऑडियो गाइडेंस में मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप अपने नोट्स में कुछ पेजेस रख लीजिए। जैसे ही आपको इसके बारे में कुछ अच्छी सूचनाएं मिलती हैं उन सूचनाओं को आप वहां शामिल कर लीजिए। मैं ये भी कहता हूं कि इस आर्टिकल को आप अपने पास रख लीजिए जो मैं नॉलेज सेंटर में प्रोवाइड करता हूं, ये आपको बाद में काम आएगा। तो सिविल सर्विस तैयारी करने का यही एक तरीका होता है, और खासकर जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनको ये भी मालूम होगा कि मैं उनको एक एक पेज हर सप्ताह एक एक पेज में कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड करता था, कुछ फैक्ट प्रोवाइड करता था। अब आप जब इसको लिखने जाएंगे तो आप देखिए कि उसमें से क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो मनरेगा से जुड़े हुए हैं, उसको आप मनरेगा वाले हिस्से में डाल लीजिए। उसमें जो जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप अलग अलग टॉपिक्स पर उनको आपको चाहिए कि क्लासिफाइड करके उनको डालते चले जाएं, तब जाकर के आपकी ठोस तैयारी होगी। और मित्रों इसी को कहते हैं मेहनत करना। मेहनत करने का मतलब 18 घंटे पढ़ना नहीं होता है, राइट। तो अब मैं आपको इसके प्लस और कुछ जो माइनस पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले आते हैं, चलिए हम माइनस पॉइंट पर। दोस्तों अभी जो लेटेस्ट स्टडी हुई है उसमें यह शो किया गया है कि मनरेगा का जो एक उद्देश्य था कि गांव में परिसंपत्तियों का निर्माण हो, मतलब जो काम ऐसे कराए जाएं जिससे कि गांव में एसेट्स बन सकें, तालाब बन सकें, कुएं बन सकें, सड़कें बन सकें, स्कूल की अस्पताल की बिल्डिंग्स बन सकें, तो इस तरह के कुछ एसेट्स बने। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केवल 20% एसेट्स बन पाए हैं, 80% एसेट्स बने ही नहीं, बने भी तो बेकार के बने, यूजलेस हो गए, कुछ दिनों के बाद खत्म हो गए। तो केवल 20% यानी कि 80% जो पैसा था वो बेकार गया, इसकी आलोचना है, कमियां हैं। दूसरा यह है कि इसका पर्पस था कि लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाए ताकि लोगों तक पैसा मिल सके, लोगों को पैसा मिल सके और लोग गांव में ही रुके, नहीं तो बहुत ज्यादा माइग्रेशन उनका होता है तो गांव में ही उनको रोजगार मिल जाए, खेती कुछ ही समय के लिए उनको रोजगार दे पाती है, जब खेती नहीं होती तब उनको रोजगार मिल सके। तो ये इसके उद्देश्य थे। लेकिन रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वहां लोगों ने मशीन का उपयोग किया, जैसे मान लीजिए कि तालाब खुदवाना है तो मनरेगा ये कहता है कि वो मजदूर खोदे, लेकिन अगर आप मशीन का इस्तेमाल कर लीजिए तो पता लगा कि वो बहुत सस्ते में भी हो गया। आपने रजिस्टर में कुछ मजदूरों के नाम दिखा दिए कि आप लोग, आपने उनको पैसा भी दे दिया और पैसा भी नहीं दिया और मशीन ने काम कर दिया, तो दिखाने के लिए होगा कि हमने तालाब खुदवाया। तो जो रोजगार देने का जो पर्पस था, एक गरीब घर में जो पैसा पहुंचाने का पर्पस था, वो नहीं हुआ। करप्शन इसमें बहुत ज्यादा हुए हैं मित्रों, और ये भी एक करप्शन के एक पार्ट है, समझिए कि किस किस तरह के करप्शंस आपको पढ़ने को मिले होंगे। देखिए, पहला तो ये कि लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं किया गया, लोग जॉब कार्ड बना करके घूमते रहे, जॉब मांगते रहे लेकिन नहीं दिया गया। दूसरा ये है कि लोगों को पूरी मजदूरी नहीं दी गई, वहां भी कमीशन खोरी चलती रही, आधी मजदूरी दे दी गई, यहां तक कि मजदूरी ही नहीं दी गई। कई जगह तो ये भी रिपोर्ट्स आई हैं, फॉल्स एंट्री दिखाई गई कि मजदूर काम पर नहीं गए हैं लेकिन उनके नाम भर दिए गए, जिसको मस्टर रोल करते हैं, मस्टर रोल में बहुत से घपले पकड़े गए। और फिर हमारे जो पंचायती राज थे, जो पूरा का पूरा आपको मालूम है कि पंचायत के द्वारा ही हैंडल हो रहा था, सब काम है पंचायत करती थी, तो पंचायती राज एक तरह से करप्शन के सेंटर बन गए। ये कुछ इस तरह की बातें आई, तो स्वाभाविक है कि इसको देखने के बाद लगता है कि भैया मनरेगा को बंद कर दो, जब यही सब नहीं हो रहा है तो इसको बंद कर दो, राइट। ये इसके डार्क पार्ट है। अब हम पॉजिटिव वाले में आते हैं मित्रों, और समय भी काफी होता जा रहा है, तो मुझे तो आप सिर्फ कंटेंट बनाना है। मेजर जो पोर्शन था वो मैंने आपसे बहुत डिटेल में बात की है, जो एक तरह से क्राफ्ट से जुड़ी हुई बातें थी, अब तो मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं। कंटेंट मैं बता रहा हूं, यही सब कुछ नहीं है, आप अपनी तरफ से भी कंटेंट ला सकते हैं, हो सकता है कि लेकर के भी आए हो, ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट पर डिफर करता है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, कि जो रूरल माइग्रेशन है, गांव से जो शहरों की तरफ जो जाने वालों की संख्या थी, गांव के लोगों की, वो स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट में अलग अलग आंकड़े आए हैं, जो 27% और 60% कम हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि शहर वैसे ही जनसंख्या के दबाव से दबते चले जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वहां अलग तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। ये मनरेगा का एक उद्देश्य था, तो इस माइग्रेशन को इसने रोका है। दूसरा ये हुआ है दोस्तों कि इसका चाइल्ड लेबर पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। ये मैं आपको सोशल स्टडीज की बात बता रहा हूं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि फिर हमारे 200 शब्द वाला मामला खत्म हो जाएगा, और फिर जनरल स्टडीज के तहत हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स के तहत इसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या कि अब मां बाप को काम मिलने लगा, तो बच्चों को उन्होंने काम पर भेजना बंद कर दिया, तो चाइल्ड लेबर कम हुआ है। और इसकी चाइल्ड जब लेबर कम हुआ तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ, उसका इंपैक्ट हुआ कि अब ये बच्चे क्या करें, तो उनको स्कूल में भेजा जाने लगा। ये बहुत ही एक पॉजिटिव, आपको मालूम है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसका भी था कि 100% हम लिटरेसी कैसे प्राप्त कर सके, और राइट टू एजुकेशन आ गया है, बच्चों को एजुकेशन दीजिए। तो लेकिन आप एजुकेशन कैसे देंगे, क्या डंडे से देंगे, मां बाप को डंडा दिखा के कि नहीं बच्चे को भेजो, लिवलीहुड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चूंकि मनरेगा ने गांव के लोगों को लिवलीहुड प्रोवाइड किया, रोजगार दिया, तो बच्चों का जो लेबर का काम करते थे वो कम हुआ, और प्राइमरी एजुकेशन के जो परसेंटेज थी वो हाई हो गई। दूसरे दोस्तों कि इसमें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनकी इनकम स्टडी में है कि लगभग 21% इन्हेंस्ड हुई है। क्योंकि देखिए, हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात इसलिए करते हैं दोस्तों, हम गांव शहर की बात नहीं करें, गांव में आप जाइए तो आज भी शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, ये आर्थिक रूप से वाकई में बहुत कमजोर हैं। ये अभी भी मेन स्ट्रीम में काफी कुछ सीमाएं टूटी हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं आया, या तो खेती पर निर्भर है, मजदूरी पर निर्भर है, खेत भी हैं तो उनके बड़े छोटे छोटे हैं, या वनोपज पर निर्भर है, तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। क्योंकि मनरेगा ने उनको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किया, और शुरू में तो 100 डेज था, अब तो उसको 200 डेज भी कर दिया गया है, तो उनकी जो इनकम थी वो बढ़ी, और दैट हैज गॉन अप टू 21%, विच इज नॉट लेस, बहुत इनकम बढ़ी। और नेक्स्ट ये हुआ दोस्तों कि जो इसमें 33% जो जॉब है वो वीमेन्स को प्रोवाइड करना था। अब आप देखिए कि जैसे बेसिक नॉलेज, अब आप देख रहे हैं ना कि कैसे मैं बेसिक नॉलेज को इससे जोड़ रहा हूं, जो बेसिक नॉलेज के बिना आप इसकी एनालिसिस नहीं कर सकेंगे। तो 33% जो जॉब है, इन अबाउट 30% वो वीमेन को प्रोवाइड करना था। तो वीमेन को जब जॉब मिलने लगा तो उनका एम्पावरमेंट हुआ। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, वीमेन को एम्पावर करना, और ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम अपने देश की महिलाओं को कैसे शक्तिशाली बनाएं। तो लगभग काफी वो एम्पावरमेंट हुआ। और दोस्तों कहते हैं कि एसेट्स नहीं हुए, लेकिन कुछ एसेट्स भी बने हैं। हालांकि एसेट्स बनने के मामले में हम काफी फेलियर हुए, कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। असली में मामला यह भी है कि स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, तो हम तो यहां कॉमन लेकर के चलेंगे। स्टडी बेस्ड अगर हम बात करते तो हम कह सकते हैं कि नहीं, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे एसेट्स बने, केरल में तो सबसे ज्यादा एसेट्स बने हैं मनरेगा के तहत, हालांकि उनको मनरेगा की जरूरत भी नहीं। बाद में तो केरल ने कह दिया था कि हमको चाहिए नहीं इसका पैसा, हमको ये पैसा और किसी दूसरे काम के लिए दीजिए तो हम लगाएंगे, क्योंकि वहां इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। तो एसेट्स भी कुछ तो बने, और नो डाउट कि इससे जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है, कह लीजिए स्थानीय जो सरकारें हैं गांव की, जिसे हम पंचायत कहते हैं, वो मजबूत हुई। मतलब पंचायतों में एक्टिविटीज बढ़ी, नहीं तो पंचायत डल है कि केवल चुनाव हो गए हैं, बस बैठे हुए हैं, लेकिन अब उनकी एक्टिविटीज काफी बढ़ गई, तो उनमें शक्ति आई और रियल सेंस में जो लोकल गवर्नमेंट है या जो डेमोक्रेसी है वो काम करने लगी। ये एक बहुत बड़ी बात हुई। ठीक है, अभी करप्शन है, ये सारी चीजें हैं, शुरुआत में हो सकती हैं, हो सकता है धीरे धीरे हम मेच्योरिटी के लेवल पर आए और कोई चीज बहुत अच्छी दिखाई दे। दोस्तों ये भी हुआ कि जो एवरेज वेजेस, आरबीआई की रिपोर्ट आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, की जो वेजेस हैं वो एवरेज जो है 15% वेजेस बढ़े हैं। वेजेस जब बढ़े तो उसका असर क्या हुआ दोस्तों? वेजेस जब बढ़े तो उसका असर ये हुआ, इनकी आर्थिक स्थिति तो सही हुई ही, दूसरी चीजों की भी वेजेस बढ़ाए गए, जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन है, वहां वेजेस बढ़े तो इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, इनको दूसरी जगह मनरेगा के कारण रोजगार भी इंश्योर हो गया, तो इनका सोशल स्टेटस भी एक तरीके से बढ़ा। क्योंकि मान लीजिए कि मैं मेरे पास 50 एकड़ जमीन है गांव में, तो मैं मजदूरों को कह रहा हूं कि ये आओ काम करो और देखो मैं तुमको केवल 75 रुपए रोज दूंगा, तो भैया मैं खाली बैठने की बजाय वो मजदूर सोचेगा कि भैया 75 रुपए में ही काम कर लो। अब वो कह रहा है कि भैया मुझे 150 रुपए तो मनरेगा में मिल रहे, मैं वहां चला जाऊंगा, तो अब ये क्या करेगा? कहेगा कि नहीं भैया तू मेरे से कम 150 रुपए तो कहेगा ही कि 150 रुपए ले ले, और यहां तक कि खुशामद भी करेगा, क्योंकि अब उसके सामने च्वाइस आ गई है कि मैं आपका काम करूं खेत में या मनरेगा का काम जाके सड़क में करूं, तो उसकी वो चिरौरी बिनती करेगा, उसकी उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट जैसा करेगा, उतना तन करके नहीं बोलेगा, धमकी की भाषा में बात नहीं करेगा, तो इससे इनकी थोड़ी सी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, जो मजदूर वर्ग है इनकी थोड़ी सी रेस्पेक्ट बढ़ी, तो इनका एक सोशल स्टेटस भी बढ़ा। और ये मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये सारी की सारी बातें स्टडी पर बेस्ड मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थी, और नो डाउट कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब हम जो सम अप करेंगे कि इतनी राजनीतिक समझ तो मुझ में है कि यदि मैं मनरेगा को बंद कर दूंगा तो जो ये हमारे देश की जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं और यहां तक कि लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो मेरी राजनीतिक पार्टी के बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि नहीं, इनको तो गरीबों की चिंता ही नहीं है, मजदूरों की चिंता ही नहीं है, गांव की चिंता ही नहीं है, तो फिर मैं अगली बार चुनाव जीतूंगा कैसे? फिर तो मैं हमारी पार्टी की एक तरह से एक राजनीतिक, एक तरह से कह लीजिए कि वो अवसान का समय ही आ जाएगा, अंत हो जाएगा। तो इतनी राजनीतिक सूझबूझ तो मेरे में मुझ में है कि बहुत सी आलोचना हो रही, कमियां हो रही, लेकिन फिर भी इसको जारी रखना चाहिए, नहीं तो जो जनमत है वो मेरे विरुद्ध हो जाएगा। यानी कि यह एक राजनीतिक आवश्यकता भी है, खासकर इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया गया है उसको भी देखते हुए। तो मित्रों ये मैंने आपको, देखिए तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं और बहुत डिटेल में बताई हैं दोस्तों। पहला कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बाद लिखने से पहले इसको समझेंगे कैसे, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, और इसके बाद मैंने दिया है कि उसमें कौन कौन से कंटेंट डालेंगे। अब आप खुद इस पर विचार कीजिए कि इस तरीके से आप लिखेंगे या एस्टिमेट के आधार पर लिख देंगे तो उनमें कितना फर्क होगा। और मित्रों अगर आप लोगों ने अपना उत्तर लिख लिया है तो मैं आप सबको बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब मैं जरूर चाहूंगा कि इस ऑडियो को सुनने के बाद, स्पेशल 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 ऑडियो को सुनने के बाद भी प्लीज आप फिर से अपना उत्तर लिखें और फिर दोनों को मैच करें। तो मित्रों इसी के साथ ही अब मैं अपने आज के इस स्पेशल 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 ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूं। 43 मिनट्स एंड 27 सेकेंड हो चुके हैं, 45 मिनट की एक क्लास होती है, तो ये पूरी एक क्लास ही समझ लीजिए, लेकिन आप इसे एंजॉय कीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आपको ये चीजें थोड़ी सी बोरिंग भी लगें, लेकिन मित्रों अगर आपने सिविल सर्विस का रास्ता अख्तियार कर लिया है तो आपको इस बोर होने की प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा, और इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मित्रों ये मजाक की बात है, मुझे मालूम है कि अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो क्यों बोर होंगे। तो इसी के साथ ही अब मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा कि इन चीजों का जो मैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूं आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और दोस्तों पढ़ने का जो ये तरीका है, समझने का जो ये तरीका है और लिखने का जो ये तरीका है, प्लीज आप अपने उन जूनियर्स को भी बताएं, अपने घर के उन बच्चों को भी बताएं जो भी प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, मिडिल स्कूल में जा रहे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में जा रहे हैं, ताकि उनकी नींव अभी से मजबूत हो सके। राइट दोस्तों, तो इसी के साथ ही अब मैं इजाजत लेता हूं, आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और सच पूछे तो आपके श्योर सक्सेस की भी कामना करता हूं दोस्तों। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।